हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश ने बेहोश आर्ना की ओर देखते हुए मन में कहा, आई प्रॉमिस कि बहुत जल्द ही हम दोनों दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर रिदांश क्लब से बाहर आ गया और अनिकेत के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े। फ्लैशबैक एंड। रिदांश ने बेड पर बेसुध लेटी आर्ना को देखते हुए मन में सोचा, किस्मत ने हमें बेशक दोबारा मिलाया, लेकिन अलग अलग रास्ते और मंजिल की राहों पर। रिदांश अपनी सोच में ही खोया हुआ था कि तभी टॉम नॉक करके डॉक्टर को लेकर कमरे में आया। डॉक्टर ने आर्ना को चेक किया और उसकी मरहम पट्टी शुरू की। पैर का जख्म गहरा था, इसलिए आर्ना को पैर में कुछ टांके भी लगे थे। साथ ही डॉक्टर ने आर्ना को पेन किलर का इंजेक्शन भी दिया था। रिदांश ने डॉक्टर से ठंडे अंदाज में पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? यस, डोंट वरी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस पैर का जख्म गहरा है तो कुछ दिन तक रोज इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। और हाँ, कुछ दिनों तक इसे ज्यादा जोर देने से बचना होगा, वरना जख्म भरने में और भी टाइम लग सकता है या फिर जख्म और भी सीरियस हो सकता है। फिलहाल मैंने इन्हें पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, डॉक्टर ने कहा। रिदांश ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए टॉम को इशारा किया। टॉम डॉक्टर को छोड़ने के लिए बाहर गया। रिदांश आर्ना को गहरी नींद में सोता देख कमरे से बाहर आया और समांथा को आर्ना के कपड़े बदलने को कहा। फिर वो अपनी माँ को देखने के लिए प्रेशा के कमरे की ओर बढ़ गया। वहाँ कल्पना जी आराम से गहरी नींद में सोई हुई थीं और प्रेशा और नम्या दोनों उनके पास बैठी हुई थीं। तभी नम्या के पास करण का कॉल आया और नम्या बात करने के लिए कमरे के बाहर चली गई। रिदांश कल्पना जी के सिरहाने बैठकर उनकी तरफ देखते हुए बोला, कैसी है माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि माँ बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन समांथा ने मुझे बताया कि भाभी को चोट लगी है। मैं बस माँ को सुलाने के बाद ही भाभी को देखने आने वाली थी, प्रिशा ने बताया। रिदांश ने अपनी माँ का सर सहलाते हुए कहा, नहीं तुम यहीं रहो, वो अब पहले से ठीक है। प्रिशा को सोच में डूबा देखकर, कोई बात है, कुछ कहना चाहती हो? मैं जानती हूँ भाई कि आप कभी किसी के साथ जानबूझकर बुरा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि आप क्यों भाभी के साथ ऐसा रूखा बर्ताव करते हैं, लेकिन भाभी सच में बहुत अच्छी हैं और अगर आज वो सही वक्त पर माँ के कमरे में नहीं पहुँचती तो भगवान जाने क्या होता। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई आप एक बार भाभी को समझने की कोशिश तो कीजिए, हो सकता है आप दोनों के बीच की गलतफहमियाँ दूर होकर मिट जाएँ, प्रिशा ने कहा। तभी कमरे में नम्या भी वापस आ गई। रिदांश ने प्रिशा की बात को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए गंभीर भाव से बेड से उठते हुए कहा, तुम दोनों भी थक गई होगी, मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम लोग कुछ खा लेना और फिर आराम करो, बाकी बातें सुबह करते हैं। जी भाई, गुड नाइट, नम्या ने कहा। गुड नाइट भाई, प्रिशा ने कहा। गुड नाइट, रिदांश ने कहा। नम्या गुड नाइट कहकर अपने कमरे की ओर चली गई। रिदांश ने प्रिशा से कहा, तुम मेरे या नम्या के कमरे में जाकर सो जाओ, मैं यहाँ माँ के पास सो जाता हूँ। नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ, प्रिशा ने कहा। आर यू श्योर कि तुम माँ को संभाल पाओगी, रिदांश ने पूछा। जी भाई, आप फिकर मत कीजिए, आप भाभी को देखिए, मैं माँ को अच्छे से संभाल लूँगी, थोड़ी भावुक होकर, और वैसे भी इतने सालों में आज मौका मिला है माँ के साथ उनके आंचल में सोने का, प्रिशा ने रिदांश का गाल छूते हुए कहा। टेक केयर, और अगर रात को कोई भी बात हो तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना, प्रिशा ने रिदांश को गले लगाते हुए कहा। जी भाई, एंड लव यू भाई, रिदांश ने प्रिशा के सर को चूमते हुए कहा। लव यू टू, गुड नाइट। गुड नाइट, प्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद रिदांश अपने कमरे में वापस आ गया। आर्ना अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। रिदांश ने अपने कपड़े लेकर शावर लेने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। शावर के बहते पानी के नीचे खड़े होकर उसके जहन में आज के सारे घटनाक्रम घूमने लगे। साथ ही उसके जहन में कहीं ना कहीं प्रिशा की बात भी चल रही थी जिसे उसने उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये बात उसके जहन में चल रही थी। भाभी सच में बहुत अच्छी हैं और अगर आज वो सही वक्त पर माँ के कमरे में नहीं पहुँचती तो भगवान जाने क्या हो जाता। भाई आप एक बार भाभी को समझने की कोशिश तो कीजिए, हो सकता है आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होकर मिट जाएं। तभी कमरे में नम्या भी वापस आ गई। रिदांश ने प्रिशा की बात को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए गंभीर भाव से बेड से उठते हुए कहा, तुम दोनों भी थक गई होगी, मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम लोग कुछ खा लेना और फिर आराम करो, बाकी बातें सुबह करते हैं। जी भाई, गुड नाइट, नम्या ने कहा। गुड नाइट भाई, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। नम्या गुड नाइट कहकर अपने कमरे की ओर चली गई। रिदांश ने प्रिशा से कहा, तुम मेरे या नम्या के कमरे में जाकर सो जाओ, मैं यहाँ माँ के पास सो जाता हूँ। नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ, प्रिशा ने कहा। आयु श्योर कि तुम माँ को संभाल पाओगी, रिदांश ने पूछा। जी भाई, आप फिकर मत कीजिए, आप भाभी को देखिए, मैं माँ को अच्छे से संभाल लूँगी, थोड़ी भावुक होकर, और वैसे भी इतने सालों में आज मौका मिला है माँ के साथ उनके आंचल में सोने का, रिदांश ने प्रिशा का गाल छूते हुए कहा। टेक केयर, और अगर रात को कोई भी बात हो तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना, प्रिशा ने रिदांश को गले लगाते हुए कहा। जी भाई, एंड लव यू भाई, रिदांश ने प्रिशा के सर को चूमते हुए कहा। लव यू टू, गुड नाइट, गुड नाइट, प्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद रिदांश अपने कमरे में वापस आ गया। आरना अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। रिदांश ने अपने कपड़े लेकर शावर लेने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। शावर के बहते पानी के नीचे खड़े होकर उसके जहन में आज के सारे घटनाक्रम घूमने लगे। साथ ही उसके जहन में कहीं ना कहीं प्रिशा की बात भी चल रही थी, जिसे उसने उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये बात उसके जहन में चल रही थी। भाभी सच में बहुत अच्छी हैं, और अगर आज वो सही वक्त पर माँ के कमरे में नहीं पहुँचती तो भगवान जाने क्या हो जाता। भाई, आप एक बार भाभी को समझने की कोशिश तो कीजिए, हो सकता है आप दोनों के बीच की गलत फहमियाँ दूर होकर मिट जाएं। कुछ देर बाद रिदांश अपने सारे ख्यालों को झटकते हुए शावर बंद करके कपड़े बदलकर कमरे में वापस आ गया। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार वो बैठकर आरना के बगल में जाकर लेट गया। कुछ पल उसके चेहरे को देखने के बाद आखिरकार वो उसकी तरफ पीठ करके लेट गया। आधी रात के करीब रिदांश की नींद अचानक ही खुल गई जब उसे अपने सीने पर कुछ भारीपन का एहसास हुआ। वो झटके से अपनी आंखें खोला और नींद में आरना को उसके सर को अपने सीने पर रखते देखकर निराशा से भरी एक गहरी सांस ली। एक पल को आरना को खुद से दूर धकेलने का सोचकर उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल आरना के सर पर बंधी पट्टी को देखकर उसे उसकी चोट का ख्याल आया और उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन आरना की इतनी करीबी से उसका सोना संभव नहीं था, इसलिए उसने आरना के सर को आहिस्ता से उठाकर तकिए पर रखने के लिए जैसे ही अपने एक हाथ का इस्तेमाल उसके सर के पिछले भाग और दूसरे का उसके चेहरे पर किया, वैसे ही अचानक आरना की नींद खुल गई। वो नींद भरी और अलसाई आंखों से रिदांश के सीने पर रखे हुए ही अपना सर हल्का सा उठाकर उसकी तरफ देखती है और कुछ पल खुद की आंखों में देखते रिदांश को यूं ही देखती रही। लेकिन जैसे ही उसे सच का एहसास हुआ, जिन आंखों में अभी तक गहरी नींद थी, अब वो आंखें हैरानी और सदमे से भरी हो गई थीं। आरना के चेहरे पर इस वक्त बिल्कुल ऐसे भाव थे जैसे किसी शेर के पंजे में फंसी मासूम और कमजोर सी हिरनी के चेहरे पर होते हैं। जैसे ही आरना के दिमाग में पूरी स्थिति आई तो वो खुद को रिदांश की बाहों में इतना करीब सोता पाकर पूरी तरह सदमे में आ गई। ये देखकर वो सदमे और घबराहट से जोर से चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोली, लेकिन वो पूरी तरह चिल्ला पाती उससे पहले ही रिदांश ने उसे सावधानी से पलटते हुए अपने नीचे लेते हुए उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अब आरना का सर नीचे बेड पर तकिए पर था और रिदांश उसके ऊपर एक हाथ से उसके मुंह पर हाथ रखे हुए और दूसरे हाथ से बेड पर अपना वजन संभाले हुए था। रिदांश ने ठंडी आवाज में कहा, डोंट इवन ट्राई टू शाउट। आरना रोबोट की तरह जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। गुड, इतना कहकर रिदांश आरना के ऊपर से हटकर वापस अपनी जगह लेट गया। ये देखकर आरना ने एक पल के लिए राहत की सांस ली और अपने हाथ का सहारा लेकर जैसे ही बेड से उठने वाली थी कि रिदांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस बिस्तर पर गिरा दिया। रिदांश ने सख्त भाव से आरना की तरफ देखते हुए कहा, नाउ वेयर द हेल आर यू गोइंग। आरना ने बिना रिदांश की तरफ देखे कहा, अपनी जगह सोने। रिदांश ने बेजार भाव से कहा, कोई जरूरत नहीं, चुप करके यहीं लेटी रहो। लेकिन आपने ही तो कहा था कि मेरी जगह वही है, आरना ने कहा। लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ कि यहीं सो जाओ, रिदांश ने कहा। आरना ने रिदांश की तरफ देखते हुए कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी हर बात और हर हुक्म मानने के लिए बाध्य हूँ, और अगर मुझ पर ये एहसान आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आज आपकी माँ की जान बचाई तो थैंक्स, बट नो थैंक्स, मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं।
इतना कहकर आरना बैठते हुए जैसे ही तकिए से अपना जख्मी पैर उठाने की कोशिश करती है, उसके मुंह से अनजाने में ही एक दर्द भरी आह निकल जाती है। ये देखकर रिदांश एक बार फिर आरना की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और आरना का चेहरा रिदांश के एकदम करीब आकर ठहर जाता है। वो अपनी बाहें आरना की कमर के इर्द गिर्द लपेट लेता है और इसी के साथ आरना के दिल की धड़कन तेजी से दौड़ने लगती है। रिदांश ने आरना के चेहरे से बाल हटाकर बेजार भाव और ठंडी आवाज में कहा, लिसन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली वाइफ, मुझे ना तो कोई शौक है और ना ही जरा भी इंटरेस्ट कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूं, लेकिन मैं बार बार तुम्हें अपनी गोद में उठाकर यहां से वहां बिल्कुल नहीं कर सकता, इसीलिए जितनी जल्दी तुम ठीक हो जाओ उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ होगा तो मेरी माँ को तकलीफ होगी जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए चुप करके यहीं लेटी रहो। इनफैक्ट जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं सोने वाली हो, और अगर तुम चाहती हो कि मैं पूरी रात तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ कर सोऊं तो तुम बेशक एक बार और यहां से उठने की कोशिश कर सकती हो। रिदांश की बात सुनकर आरना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर ऐसे भयानक भाव आ गए थे जैसे इस वक्त वो अपने सामने खुली आंखों से कोई भूत देख रही हो। रिदांश ने बेजार भाव से कहा, सो यू वॉन्ट इट? आरना ने जल्दी जल्दी रोबोट की तरह अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नो। आरना की बात सुनकर रिदांश ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। ये महसूस करके आरना जल्दी से रिदांश से दूर होकर बेड की दूसरी तरफ लेटते हुए बेतहाशा धड़कते दिल के साथ रिदांश की तरफ पीठ करके अपनी आंखें कस कर मींच लेती है।